जीवन के देवता को आओ तनिक संवारें।
मनुष्य का जीवन अनेक दिव्य संभावनाओं का प्रवेश द्वार है। इस सत्य से अवगत होने के बाद भी अनेकों लोग इस सुरदुर्लभ मानवीय जीवन को एक बोझ की तरह जीते देखे जाते हैं। उन्हें मानवीय जीवन की गरिमा का बोध कराने के लिए युगऋषि परम पूज्य गुरुदेव अपने इस विशिष्ट उद्बोधन में कहते हैं कि हमें मानवीय जीवन की महत्ता को समझने की आवश्यकता है।
ये जीवन क्षणभंगुर है।
जब तक जीवन जीने के सही तरीके का बोध हो पाता है, तब तक चलने का समय आ जाता है।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जीवन की गरिमा को सार्थक बनाने के लिए गायत्री उपासना के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन जिया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य अपनी भावनाओं का परिष्कार है। गायत्री उपासना का अर्थ पूजा, उपासना के छुटपुट कर्मकांड नहीं है, वरन उसका अर्थ अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करना है।
आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को।
जीवन कैसे संवारें? गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों,
पुराने जमाने की बात है।
एक देश में ऐसा रिवाज था कि कोई मनुष्य एक राजा बनाया जाता और उस राजा को 5 वर्ष तक राज्य करने का मौका दिया जाता। जितनी भी सुविधा चाहे उठा सकता था, जो भी आनंद चाहे ले सकता था।
लेकिन 5 वर्ष बाद एक ऐसा बंधन था कि उस राजा को पकड़ ले जाते थे और एक ऐसे द्वीप में छोड़ देते थे जहाँ न कोई मनुष्य था, न कोई पहाड़ था, न कोई पेड़ पौधा, न कोई घास पात थी।
अकेला प्राणी, अकेला राजा बैठा रहता था।
खाने को कुछ नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, छाया नहीं मिलती और थोड़े दिनों में उस राजा की बुरी तरीके से तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती थी।
ऐसा रिवाज था।
बहुत से राजा आए और उन्होंने 5 साल तक राज्य किया। 5-5 साल के राज्य में उनको सिर्फ इस बात का ही ख्याल रहा कि हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए और हमें बहुत आनंद में रहना चाहिए।
रोज सिनेमा, रोज नाच गाना, रोज मिठाई, रोज पकौड़ी, रोज कैंटीन, रोज चाय आदि में जिंदगी के 5 वर्ष उन्होंने इस तरीके से खर्च कर दिए। 5 वर्ष बाद जब उनके जाने का वक्त आया तो वे बहुत रोए, बहुत चिल्लाए।
उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य बहुत अंधकार में है और हमको जंगल में रहना पड़ेगा। हमको पानी भी नहीं मिलेगा, भोजन भी नहीं मिलेगा और हमारी बुरी तरह से मौत हो जाएगी।
यह कह करके वे रोते चिल्लाते, लेकिन आदमी उसे घसीट ले जाते और उसी बियाबान जंगल में उसे छोड़कर चले आते। बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे राजा इसी प्रकार से मर गए।
उनकी हड्डियां उस बियाबान द्वीप के जंगल में ऐसे ही पड़ी हुई थी।
मित्रों, एक समझदार राजा आया। उसने कहा, भाई,
हमको 5 साल के लिए राज्य मिला है और 5 साल बाद हमको और कहीं जाना पड़ेगा, कहीं और रहना पड़ेगा। उसने सोचा कि कहाँ जाना पड़ेगा और कहाँ रहना पड़ेगा।
जरा देख करके तो आए।
पहले दिन जब गद्दी मिली तो वह नदी किनारे गया और नाव जहाज पर सवार हुआ और उस द्वीप में गया जहाँ की 5 वर्ष बाद उसे जाना था। वहाँ जाकर के उसने एक काम शुरू किया कि जब 5 साल बाद हमको यहीं रहना है, हाँ यहीं रहना है।
बस सरकारी खजाने में जो पैसा था, जो सामान था, जो माल था, उन सब की धुलाई शुरू कर दी और वहाँ एक महल बनाया। फिर बगीचा लगाया, बस्ती बसाई, फिर वहाँ नौकर रखे, कारखाना शुरू किया, वहाँ ट्यूबवेल लगवाए और काम चालू करवाया। 5 साल के भीतर उस सारे के द्वीप को, जो बियाबान था, सुनसान था, उसे ऐसा सुंदर बना दिया कि जब 5 वर्ष बाद जाने के दिन आए तो कैलेंडर देखने लगा।
अरे भाई, इस वर्ष को व्यतीत होने में अभी कितने दिन बाकी हैं? लोगों ने कहा कि 3 महीने बाकी हैं।
उसने कहा कि 3 महीने पहले हमारी छुट्टियां, जो कैजुअल लीव बाकी हो, वह छुट्टी हमको दे दो और हमें जाने दो। उन्होंने कहा, नहीं, आपको पूरे 5 साल रहना पड़ेगा। मित्रों,
राजा ने फिर कैलेंडर देखा तो पता चला कि अभी 1 महीना और है।
उन्होंने कहा कि भाई, 1 महीना पहले जाने दो, हमारी अर्न लीव में से काट लो।
लोगों ने कहा कि कैजुअल लीव भी नहीं और अर्न लीव भी नहीं, पूरे 5 साल आपको यहीं रहना पड़ेगा।
राजा पूरे 5 साल रहा। 5 साल बाद दूसरे राजा, जबकि रोते चिल्लाते हुए, बेचारे दुखी होते हुए विदा होते थे, वहीं यह राजा हंसी खुशी से गीत गाता हुआ, बाजे बजाता हुआ और अपनी बुद्धिमानी का झंडा फहराता हुआ उस द्वीप में चला गया। कुछ दिन की जिंदगी बेहतर जिए। मित्रों,
यह कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन यह वह कहानी है जो हमारे और आपके जीवन से घनिष्ठ संबंध रखती है। हमको थोड़े दिनों के लिए एक राजा जैसा मौका मिला है और हमको जिंदगी के थोड़े दिन जीने के लिए मिले हैं। इस जिंदगी को किस तरीके से खर्च किया जाए, यह जानना समझना जरूरी है। हम बेवकूफ राजाओं के तरीके से, जिन्होंने पूरे के पूरे 5 साल अपनी छोटी छोटी सुविधाओं का ख्याल करने में व्यतीत कर दिए और जब जाने का वक्त हुआ तब परेशान हुए। क्या हमको उसी तरह का राजा बनना चाहिए अथवा उस तरह का राजा बनना चाहिए जिन्होंने कि पूरे के पूरे 5 साल इस तरह सोचा कि हमको आगे भविष्य में जिंदगी भर जहां कहीं भी अपना समय गुजारना है वहां के लिए पहले ही अपने लिए सुविधाएं पैदा कर लें। कच्चे धागे से लटकी हुई तलवार हमारे सिर के ऊपर टंगी हुई है। कह नहीं सकते कि आज हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन कल क्या होगा कौन जानता है। अभी हमारा दिल धड़क रहा है, कल हमारी मौत आ जाए कौन जानता है।
मित्रों,
उस राजा को तो इंतजार भी था कि 5 वर्ष तक उसी राज्य में रहना पड़ेगा, किंतु हम और आप तो उन लोगों में से हैं जिनको अभी शाम तक का इंतजार नहीं है। साथ ही यह भी पता नहीं है कि शाम तक बैठने के लिए मौका मिलेगा कि नहीं।
घिया मंडी मथुरा में हमारे यहाँ एक किराने की दुकान वाला दुकानदार था। उसी गली में एक खोमचे वाला आया। वह खोमचे वाले के पास गया और बोला, भाई पकौड़ी देना।
चवन्नी की पकौड़ी ली और उसे लेकर अपनी दुकान पर आ ही रहा था कि उसका दिल जोर से धक धक करने लगा। उसने पकौड़ी दुकान पर रखी और सीने पर हाथ फेरने लगा।
नौकर से पानी मंगाया। जब तक वह पानी लेकर आया तब तक दुकानदार खत्म। मित्रों,
मालूम नहीं हम और आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं हम लोगों का कल क्या होगा। किसी को पता नहीं, इसलिए हमको समझदार राजा के तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए।
मित्रों, यह बात मुझे मेरे गुरुदेव ने 45 वर्ष पूर्व बताई थी। 45 वर्ष पूर्व मुझे आत्मज्ञान का शिक्षण गायत्री मंत्र के माध्यम से ज्ञान दिया गया था। गायत्री मंत्र के माध्यम से मुझे गृहस्थ जीवन यापन करने के छोटे छोटे वह खेल सिखाए गए जो कि हमारी कन्याओं को उनकी माता सिखाती है।
गृहस्थी किस तरीके से चलाना चाहिए, खेल खिलौनों के माध्यम से कन्या को उसकी माता सिखाती है। छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया बना करके उसके हाथ में दे देती है और कहती है कि देख, इसकी शादी होगी और इनको इस घर में रहना पड़ेगा। छोटी चक्की दे देती है और कहती है कि देख, चक्की इस तरीके से पीसनी पड़ेगी और देख, चूल्हा जलाना पड़ेगा। छोटे छोटे खिलौने लड़की के पास मिल जाते हैं। लड़की मिट्टी की रोटी बनाती है और दूल्हे का ब्याह करती है और गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती है। गुड्डे गुड़ियों का खेल इसलिए खेला जाता है कि बड़ी होकर के, गृहस्थ होकर के, वह अपने गृहस्थ जीवन के बारे में जानकारियां रखे। उसको क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, इस संबंध में उसको कुछ आइडिया हो जाता है तो लड़की अपने गृहस्थ में असुविधा अनुभव नहीं करती। गुड्डे गुड़ियों के खेल के द्वारा वह बहुत कुछ सीख जाती है।
गायत्री उपासना से आध्यात्मिक शिक्षण। मित्रों, ठीक उसी प्रकार गायत्री उपासना के और दूसरे कर्मकांडों के माध्यम से हमको आध्यात्मिक भूमिका में प्रवेश करने का शिक्षण दिया जाता है।
हमारे ये कर्मकांड आध्यात्मिक भूमिका में प्रवेश करने के लिए मोटे मोटे प्रशिक्षण हैं और वे तौर तरीके हैं जिनके द्वारा हमको वह शक्ति और शांति प्राप्त करने का मौका मिल जाता है जो हमारे अंतरंग में छिपी हुई है और जिनको हम भावनाओं द्वारा परिष्कृत कर सकते हैं। भावनाओं के द्वारा हम अपने अंतरंग को परिष्कृत कर सकते हैं, तब हमको आध्यात्मिकता के पूरे के लाभ मिल सकते हैं।
अगर हमारी समझ में यह बात न आए कि हमारे अंतरंग में भगवान का महानतम प्रकाश विद्यमान है और उसको जगाने के लिए हमको उत्कृष्ट भावनाओं की जरूरत है, तो फिर हमारे कर्मकांडों का कोई ज्यादा मूल्य नहीं रह जाता। मेरे गुरुदेव ने मुझे कर्मकांड पहले ही चरण में सिखा दिए। गायत्री महामंत्र का शिक्षण। गायत्री महामंत्र की उपासना विधि बहुत ही सरल मालूम पड़ी।
मुझे तब बहुत अचंभा हुआ और बहुत हैरत भी हुई कि गायत्री मंत्र का महत्व जैसा कि मेरे गुरुदेव ने बताया है कि यह अमृत है, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने बताया है कि यह पारस है, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने बताया है कि यह कल्पवृक्ष है, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने बताया है कि यह कामधेनु है, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने बताया है कि गायत्री के 5 मुख हैं और इनमें से 5वां मुख ब्रह्मास्त्र है जिसको जहां भी जिस पर भी हथियार की तरह प्रयोग किया जाएगा वह चूर चूर हो जाएगा।
मित्रों,
ऐसी कीमती चीज में ऐसी शक्ति भी हो सकती है। बंदूक से हम शेर का मुकाबला करते हैं और डाकू का मुकाबला करते हैं, तब हमको चोर डाकू से मुकाबला करने की थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा मौका मिल जाता है। लेकिन ब्रह्मास्त्र जो टॉमीगनों से भी, स्टिंगनों से भी महंगा है, मशीनगनों से भी महंगा है और तोप से भी महंगा है।
इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र इंसान को इतने सस्ते दाम में मिल जाएगा, पहले मुझे शक हुआ।
पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुदेव जो मुझे सिखाते हैं क्या वह सही बात सिखाते हैं या बहका रहे हैं। पहले पहले मुझे ऐसे ही लगा कि हमें बहकाया जा रहा है।
जब उन्होंने यह बात बताई कि तांबे का पंचपात्र ले आना और 1 चम्मच ले आना और 5 बार आचमन कर लेना,
मुझे यह बताया गया कि ढाई आने की लकड़ी की एक माला खरीद कर ले आना और घुमाने लगना, गुरुदेव ने हमें बताया कि 1 पैसे की खड़िया मिट्टी ले आना और हथेली पर घिसकर तिलक लगा लेना, 1 आने की गायत्री माता की तस्वीर ले आना और पूजा चौकी पर रख लेना और धूप दीप रोली, फूल चढ़ा लेना।
फिर गायत्री माता प्रसन्न हो जाएंगी, शक्ति आ जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा और शांति आ जाएगी। मित्रों,
जब वे इतनी बातें बताने लगे तो मुझे शक हुआ और मैंने कहा शायद कहीं बहकाया तो नहीं जा रहा है। ठगने वालों की ठगने की तरकीब एक ही है कि वे कम दाम में बड़े लंबे चौड़े सपने दिखाते हैं। सारी दुनिया में ठगों का एक ही तरीका है, वह क्या है? कम दाम में, कम खर्च में, कम फायदे में वे बड़े लंबे चौड़े ख्वाब दिखाते हैं कि तुमको इतना फायदा हो जाएगा। सब ठगों की तरकीब अलग हो सकती है, स्वरूप अलग हो सकते हैं, पर साइंस एक ही है, फिलॉसफी एक ही है कि जिस किसी को ठगेंगे तो उसको पहले लंबे लंबे सब्जबाग दिखाएंगे और यह बात बताएंगे कि ये सब्जबाग बहुत छोटे में आनन फानन में पूरे हो जाएंगे। बस सारे ठगों की फिलॉसफी इसी पर टिकी हुई है। जहां कहीं भी जो कोई ठगा जाएगा इसी बात पर ठगा जाएगा। गवर्नमेंट ने भी ठगी के नेचर को जान लिया है, ठगों की फिलॉसफी को समझ लिया है,
इसलिए वह एक रुपये वाले कागज के पन्ने छाप करके लोगों को बहकाती रहती है कि लो भाई लॉटरी ले लो, 5 लाख रुपये ले लो।
अकल के अंधे और गांठ के पूरे लाखों मनुष्य हैं जो कागज के पन्ने खरीदते रहते हैं।
मित्रों,
उन 50 लाख मनुष्यों में से जिन्होंने कागज के पन्ने खरीदे थे उनमें से 2-5 आदमी ऐसे होते हैं जिनको 1-2 लाख, 5 लाख रुपया मिल जाता है और सारे के करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो अपनी जेब कटा बैठते हैं।
उसके 1 रुपये का वे घी खा सकते थे, 1 रुपये का दूध पी सकते थे और 1 रुपये का काम कर सकते थे, 1 रुपये का भिखारी के लिए कुछ इंतजाम कर सकते थे।
वह सारा का रुपया और धन लॉटरी का टिकट खरीदने में चला गया। ठगी इंसान की होती है।
ठगी वहाँ होती है जहाँ जो कोई आदमी कम खर्च में लंबे चौड़े फायदा होने की बात सिखा रहा हो, तो समझना चाहिए कि वहाँ कोई जालसाजी होनी चाहिए और ठगी होनी चाहिए।
मुझे अपने गुरुदेव पर पूरा शक हुआ कि उन्होंने मुझे इतनी लंबी चौड़ी बात सिखाई है।
उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि 8 आने का तांबे का पंचपात्र ले आओ,
2.5 आने की लकड़ी की माला खरीद लाओ और 2.5 आने की गायत्री माता की तस्वीर खरीद लाओ और वहाँ रख दो,
54 की धूपबत्ती खरीद लाओ और जला दो, फिर हाथ जोड़ो, पांव छुओ, दंडवत करो और माला घुमाकर चल दो।
नहीं, यह ऐसा सस्ता नहीं हो सकता। या तो लाभ गलत है या विधि गलत है, दोनों में से एक बात जरूर है।
कैसे मिलती है सच्ची आध्यात्मिक शक्ति? मित्रों, पहले मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ। आज से 45 वर्ष पूर्व मेरे गुरुदेव ने मेरी बात को समझ लिया।
मेरे मन की बात को वे समझ गए। उन्होंने आगे वाली बात बतानी शुरू की। उन्होंने कहा, बच्चे हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे यह केवल बाहरी उपकरण और बाहरी माध्यम बताए हैं। असली बात जो काम करना बाकी है और आध्यात्मिकता की शक्ति के साथ जो प्राप्त करना बाकी है वह अलग है। मैंने कहा, वह क्या है? उन्होंने जो बात बताई उससे मेरा जी प्रसन्न हो गया और मुझे संतोष हुआ कि मुनासिब कीमत पर मुनासिब चीज बेचने वाली दुकान दुनिया में है और ईमानदारी कायम है और उन्हीं को विद्यमान रहने का हक है।
मेरे पास वेस्ट एंड वॉच कंपनी की एक घड़ी है, 250 रुपये की है।
10 साल हो गए मुझे मरम्मत नहीं करानी पड़ी क्योंकि 250 रुपये की आई है। 10 पैसे की भी घड़ी आती है जो हमेशा एक ही टाइम देती है और हमेशा 9:30 बजे बताती है। इसमें चाबी भी नहीं लगानी पड़ती, इसकी मरम्मत भी नहीं करानी पड़ती, परंतु इसकी हैसियत, इसकी शान में बड़ा फर्क पड़ता है।
मित्रों,
मुझे पहले यही लगा था कि पूजा उपासना के छुटपुट कर्मकांड जो बताए जा रहे हैं उनसे कैसे संभव है, कैसे मुनासिब है कि आदमी उतने लाभ उठा ले जो कि मुझे बताए गए हैं।
लेकिन अगला वाला चरण जो मुझे सिखाया गया
उससे मैं धन्य हो गया और मैं निहाल हो गया और मैंने गायत्री महामंत्र की उपासना के माध्यम को सीखा और मेरे हृदय के कपाट खुलते गए।
तब जैसा कि मैंने गायत्री महामंत्र के पहले चरण के संबंध में अपना पहला पाठ और पहला शिक्षण बताया था, मुझे बहुत ही संतोषजनक मालूम हुआ।
मैंने उपनिषदों में गायत्री मंत्र के 3 चरणों की 3 व्याख्याएं की हैं। बस मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि संसार में गायत्री मंत्र के 3 चरणों की जो व्याख्या की गई है वह अक्षरशः सही है।
उपनिषदकार ने पहली व्याख्या गायत्री महामंत्र के पहले चरण की है। उसमें बताया गया है कि अस्तो मा सद्गमय,
असत की ओर नहीं सत की ओर चल। 2 रास्ते हैं, एक बंबई की ओर जाता है और एक कलकत्ते की ओर जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, मील के पत्थर अलग हैं, रास्ते में पड़ने वाले शहर अलग हैं, दोनों की मंजिल अलग हैं, दोनों के मुंह अलग हैं, दोनों के चेहरे अलग हैं, दोनों की राय अलग है। दुनिया में 2 रास्ते हैं,
एक को कहते हैं श्रेय और एक को कहते हैं प्रिय।
प्रिय उस चीज का नाम है जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हमको जो सुख मिलते हैं उससे संबंधित हैं। श्रेय उस चीज का नाम है जो हमको दिमाग के द्वारा सुख मिलते हैं, उससे संबंधित है।
इंद्रिय सुख से मिलता दुख। मित्रों,
दिमाग के द्वारा क्या सुख मिलता है? दिमाग में जिस तरीके से इंद्रियों में खुजली मचती रहती है, उसी तरीके से दिमाग में भी, मन में भी एक खुजली मचती रहती है। इंद्रियों में दाद है। आपने कभी दाद को खुजाया है क्या? दाद उस चीज का नाम है जो जख्म जैसी खाज हो जाती है और उसे खुजाने में बड़ा मजा आता है। खुजाने के बाद खून निकलता है और खून निकलने के बाद वह अंग घायल हो जाता है, लेकिन खुजाते वक्त बड़ा मजा आता है।
उसी बीमारी का नाम है दाद।
दाद हमारी दसों इंद्रियों के मुंह के ऊपर है, जबान के ऊपर है। जबान के सबसे ऊपर हमारे दाद है। इन्हें खुजाने का ऐसा मन करता है कि न जाने इसमें से क्या चीज खाना चाहिए। पकौड़ी वाले की दुकान पर जाते हैं तो हमारा मन ऐसा कहता है कि पकौड़ी खानी चाहिए और बहुत मात्रा में खानी चाहिए, और जब मिठाई वाले की दुकान पर जाते हैं तो मुंह में पानी भर आता है, लार टपकती है और मन यह कहता है कि मिठाई खानी चाहिए। दाद जहां के तहां है और निकम्मी इंद्रियों के ऊपर भी एक दाद है जो खुजाता रहता है और खुजाते वक्त में उससे खून टपकता रहता है। जिस तरह से जो कुत्ता होता है हड्डियों को चबाता है, हड्डियों को चबाने के वक्त में उसके जबड़े में खून निकलता है और वह जबड़े वाले खून को पीता रहता है और यह ख्याल करता रहता है कि हड्डी में से बड़ा मजेदार खून निकल रहा है और मैं पी रहा हूँ। हड्डी में से खून निकलता है क्या? नहीं, वह तो लकड़ी के बराबर है और सूखी पड़ी है। उसमें से क्या खून निकलने वाला है? खून तो हमारे भीतर से निकलता है और हम अपने आप को चखते रहते हैं।
मित्रों,
इसी तरह कामवासनाओं की आग से क्या हमको कुछ मिल जाता है? नहीं, कुछ भी नहीं मिल जाता। केवल अपना शरीर, केवल अपना तेज, केवल अपना वर्चस्व, केवल अपना ब्रह्म तेज, केवल अपनी वाणी की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति, स्मरण शक्ति, सारी की सारी शक्तियों को हम कुत्ते की हड्डी के तरीके से चबाते रहते हैं, और जब दांत खुजाता है तो हमको यह मालूम पड़ता है कि न जाने हम क्या नियामत लेकर के आए हैं और न जाने क्या लूट करके ले आए हैं। असत दिन रात हमारी जिंदगी के ऊपर सवार है और हमारी जिंदगी को नष्ट करता रहता है। लुकमान ने कहा है, आदमी मरने के लिए अपनी मौत की कब्र अपने जबान की नोक से खोदता रहता है। हम और आपने ऐसी खूबसूरत जिंदगी पाई, फिर भी बीमार रहते हैं। खरगोश बीमार नहीं हुए, लोमड़ी बीमार नहीं हुई, जंगल में रहने वाले हिरन बीमार नहीं हुए, मोर और कबूतर बीमार नहीं हुए। केवल एक ही बेवकूफ जानवर दुनिया में है जो बीमार होता है और बीमारियों को पैसे देकर खरीदता है।
बीमारियां खरीदने वाले बेवकूफ जानवर का नाम है इंसान।
इंसान बीमारियों से ग्रसित पाया जाता है और यह सारी की बीमारियां उसने अपनी जबान को बेकाबू करके पाए हैं।
हकीम लुकमान का कहना सही था।
लुकमान का कहना गलत नहीं था। जो आदमी अपनी इंद्रियों पर काबू रखते हैं, कामवासना को काबू में रखते हैं, अपने सारे के समय और वक्त को पाबंदी से खर्च करते हैं,
जिनकी दिनचर्या और जिनकी मानसिक स्थिति ठीक तरीके से बनी रहती है, उनको बीमार पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। परिश्रमी को नहीं होते रोग। मित्रों, राजा शीलभद्र एक बार एक गांव में गए। गांव वालों ने राजा की बड़ी खातिरदारी की। राजा ने गांव वालों से कहा कि तुम लोग बड़े भले और नेक आदमी हो,
हम तुम्हारे गांव की बड़ी सेवा करेंगे, गांव के लिए बड़ा काम करेंगे।
गांव वालों ने कहा, अच्छा कीजिए। उन्होंने एक अस्पताल खुलवा दिया। डॉक्टर आया, ऑपरेशन के सारे सामान आए, इंजेक्शन आए, दवाइयां आईं और कैप्सूल आए,
सब चीज बनकर तैयार हो गई। डॉक्टर आ गया, कंपाउंडर आ गया,
नर्स आ गई, सबके सब तैयार हो गए।
सब चीजें बनकर तैयार हो गई कि अस्पताल चलेगा। डॉक्टर साहब ने सारे दिन इंतजार किया कि कोई मरीज आए और हमको उसका इलाज करना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, जैसे किसी को अपेंडिक्स हो गया हो, हॉट ट्रबल हो गया हो, लेकिन कोई मरीज नहीं आया। महीना भर हो गया, दो महीने हो गए, तीन महीने हो गए, चार महीने हो गए, बारह महीने हो गए, कोई नहीं आया। एक दिन राजा ने मुआयना किया कि हमारा अस्पताल बहुत जोरों से चल रहा होगा और गांव वालों को बहुत फायदा हुआ होगा और बहुत से आदमियों के ऑपरेशन हुए होंगे,
जा करके देखूं तो सही। राजा शीलभद्र आए और डॉक्टरों से कहा कि लाइए अपनी फाइलें, लाइए और अपने रिकॉर्ड दिखाए, अपने रजिस्टर दिखाए,
रोज कितने ऑपरेशन हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, हमारे यहाँ तो कोई ऑपरेशन नहीं होता, कोई मरीज नहीं आता।
राजा डॉक्टर पर झल्लाए और बोले, शायद तुमने लापरवाही की होगी। फिर गांव वालों को बुलाया। उन्होंने कहा, भले आदमी, तुम लोग बड़े निकम्मे मालूम पड़ते हो। हमने अस्पताल खोला लेकिन तुम में से कोई भी आदमी ऑपरेशन कराने नहीं आता,
कोई इंजेक्शन लगवाने नहीं आता, कोई भी कैप्सूल नहीं खाता। बहुत खराब बात है।
उन्होंने कहा, महाराज जी,
बात यह है कि हम लोग बीमार नहीं पड़ते। राजा ने कहा, यह कैसे संभव है? उन्होंने कहा, यह बात इसलिए संभव है कि हम में से हर आदमी खूब मेहनत करता है। बीमारियां आती हैं और हमारे बदन से चिपकना चाहती हैं, लेकिन पसीने के साथ बहकर नीचे टपक जाती हैं।
मित्रों,
बीमारियां आती हैं तो वे हमारी जबान के असंयम के कारण आती हैं। जबान के ऊपर संयम रखने, उसके ऊपर काबू रखने, पेट के ऊपर काबू रखने से बीमारियां नहीं चिपकती। जब हम बीमार होते हैं तो खाना बंद कर देते हैं। जैसे ही हम खाना बंद करते हैं तो बीमारी कहती है कि भाई, यहाँ रहना बेकार है।
यहाँ खाने को तो मिलता नहीं, रसगुल्ला तो मिलता नहीं, फॉर्च्यून के बिस्कुट नमकीन तो मिलता नहीं।
यहाँ तो रहना बेकार है,
यहाँ से चल देना चाहिए। फिर वह बीमारी वहाँ से चली जाती है और वहाँ जाती है जहाँ की फॉर्च्यून फैक्ट्री के बिस्कुट मिलते हैं,
जहाँ बोर्नविटा मिलता है, जहाँ हॉलिक्स मिलता है। बीमारी वहाँ चली जाती है और मौज मजे किया करती है। बीमारी गरीबों के पास क्या करेगी?
मानवीय जीवन का एक ही है लक्ष्य। मित्रों,
मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि मनुष्य के देखने के ढंग और विचार करने के ढंग यदि ऊंचे हो जाते हैं तो उनका मन पेट के ऊपर से उखड़ जाता है और उनका मन परमात्मा की ओर चला जाता है। मन एक का ही हो सकता है, दो का नहीं। औरत एक की हो सकती है, दो की नहीं हो सकती। मर्द एक का हो सकता है, दो का नहीं हो सकता।
लड़की का ब्याह कर दिया।
किसके साथ कर दिया?
लाला चमनलाल के साथ भी कर दिया और बंशीलाल के साथ भी कर दिया। अरे बाबा,
दो के साथ ब्याह क्यों कर दिया? भूल जाएगा तो लड़ाई करेगा और यह कहेगा कि हमारे साथ चल,
दूसरा कहेगा कि हमारे घर चल।
एक के साथ ब्याह हो सकता है, दो के साथ नहीं। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य एक ही हो सकता है, दो दिशाओं में निर्धारित नहीं हो सकता।
प्रिय, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य होगा तो श्रेय गौण होगा।
अगर हमारे जीवन का लक्ष्य यह है कि हम दुनिया की सुविधाएं इकट्ठी करें, दौलत इकट्ठी करें, चीजें इकट्ठी करें और हम दुनिया में अपनी ख्वाहिशें पूरी करें और हम दुनिया के ऐशो आराम इकट्ठे करें, तब पूजा घटाव पाठ संभव तो है, नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन वह ऐसा हो जाएगा जैसे कि घर में दूसरे लोगों के देवर जेठ रहते हैं, नौकर चाकर होते हैं और घर की स्त्री अपने पति की सेवा करती हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं, उनके साथ व्यवहार अलग होता है।
मित्रों,
और दूसरों के साथ?
अरे मोहन,
तू कहाँ था?
तू भी खा ले। जी मालकिन,
आपने अभी बुलाया कहाँ था?
हाँ ठीक है, यहाँ आ जा,
बैठ जा यहाँ और खाना खा ले। तो नौकर को ऐसे खाना खिलाया जाता है और मालिक को? जब अपना पति आता है तब पंखा झलते हैं, हाथ धुलाते हैं और पैर धुलाते हैं। खाना खिलाते समय बार बार पूछते हैं कि घी तो कम नहीं है, नमक तो कम नहीं है, गरम मसाला तो कम नहीं है, चटनी तो और नहीं चाहिए,
नींबू का अचार लाऊं क्या,
पापड़ तो नहीं चाहिए। इस तरह बहुत तबीयत के साथ पूछते रहते हैं और नौकर से कहते हैं कि जो चाहिए सो मांग लेना, तेरा घर है, शर्माना मत।
रोटी और शाक चाहिए तो मांग लेना।
नौकर को खिलाने में और अपने पति को खिलाने में फर्क नहीं है क्या?
हाँ फर्क है,
दो जगह नहीं लगता मन।
मित्रों,
आदमी का मन किस में लगता है क्या बताए साहब? आजकल तो हमारा सीलिंग का काम हो गया है और अब हमारे पास दुकानदारी आ रही है। सवेरे से उठते हैं और 12 बजे तक उसी में लगे रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हिसाब में गलती पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ज्यादा पेमेंट ले जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बैंक के हिसाब में गलती पड़ जाए, सारा दिमाग उसमें लगा रहता है। फिर भगवान का भजन कब करते हैं?
हाँ साहब,
सवेरे उठते तो हैं पर क्या करें,
भजन में मन बिल्कुल नहीं लगता। बेटे,
दो जगह मन नहीं लग सकता, लेकिन एक जगह मन लग जाएगा। जहाँ कहीं भी आपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उसमें आपका मन लग जाएगा। दूसरी चीजें जो गौण होंगी, ठीक है, थोड़ा बहुत मन बहलाव के लिए, तबीयत के लिए वह भी काम कर लें तो कोई हर्ज नहीं है।
हमारे भीतर हैं स्वर्ग व नरक। मित्रों,
हमेशा आपकी यह शिकायत रहती है कि हमारा मन नहीं लगता, आपकी यह शिकायत गलत है। आपका मन क्यों नहीं लगता, वजह क्या है? आपका कोई लक्ष्य थोड़े ही है, मन हमेशा एक काम में लगता है जो जीवन का लक्ष्य है। मेरे गुरुदेव ने पहले दिन मुझे आत्मज्ञान का जो पाठ पढ़ाया तो उन्होंने यह पाठ पढ़ाया और मुझे बताया कि तुम्हारा गांव, जहां बाकी जिंदगी में तुम्हें रहना है, वह तुम्हारा गांव या राज्य यह है जिसको अंतःकरण वाला क्षेत्र कहते हैं। मरने के बाद में स्वर्ग जाना पड़ता हो या मरने के बाद कहां जाना पड़ता हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक दुनिया अलग है जो मेरे भीतर की दुनिया है।
उसको मैं अंतर्मुखी दुनिया कहता हूँ, उसको मैं भावनाओं की दुनिया कहता हूँ।
तब यह भी संभव है कि कहीं ऐसी भी जगह हो जहाँ हम मरने के बाद जाया करते हैं, वहाँ खाने पीने की चीजें मिला करती हैं, संभव है ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं यह कह नहीं सकता।
मित्रों, और नरक,
कहीं ऐसा भी होना संभव है कि जहाँ आदमी कोल्हू में चलाया जाता हो, चक्की में चलाया जाता हो, पानी में डुबोया जाता हो, आग में जलाया जाता हो, यह सब हो सकता है, मैं कैसे कहूँ? जो चीज मैंने देखी नहीं उसके बारे में मैं कैसे कहूँ? लेकिन मैंने एक नरक देखा है और एक स्वर्ग देखा है। बाह्य जीवन में मनुष्य की जो वृत्तियां ठहरी रहती हैं, तो आदमी नरक में डूबा रहता है, और जब मनुष्य की वृत्तियां अंतरंग शक्ति में घूम जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो आदमी स्वर्गलोक में चला जाता है। स्वर्ग और नरक की दीवारें आपस में बिल्कुल मिली हुई हैं। स्वर्ग और नरक बिल्कुल एक ही मोहल्ले में, एक ही गांव में, एक ही पास में रहते हैं। नरक उस चीज का नाम है जिसमें कि मनुष्य की ख्वाहिशें और इच्छाएं बाहरी दुनिया में बनी रहती हैं, और आदमी हमेशा यह तमन्ना करता रहता है कि अमुक चीज मिलनी चाहिए, तुमुक चीज मिलनी चाहिए, और जब वे चीजें नहीं मिलती तो आदमी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत नाराजगी पैदा होती है, लेकिन जब वे चीजें मिल जाती हैं तो भी संतोष हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ही वे चीजें मिलनी शुरू हुई, उससे दूनी और चौगुनी ख्वाहिशें तमन्नाएं बढ़ती चली जाती हैं, और वे इतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं कि आदमी को अंततः जला देती हैं।
मित्रों,
तृष्णा अपने आप में एक ऐसी चीज है जो आदमी को जला देती है। तृष्णा दिमाग की खुजली है, इंद्रियों में खुजली मचती है जो हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए आती है। जीभ में जो खुजली मचती है हमारे स्वास्थ्य को खाने के लिए आती है।
जीभ की खुजली को आप जितना अधिक खुजाते रहेंगे, सवेरे आप जितनी पकौड़ियाँ खाएंगे, दोपहर को आप जितनी चाट खाएंगे और शाम को जितनी मिठाइयाँ खाएंगे, उतना ही अधिक आपका स्वास्थ्य चौपट होता चला जाएगा। जितनी अधिक चीजें आप खाएंगे, खाऊं खाऊं की रट जितनी तेज होती चली जाएगी, उतना आपका शरीर नष्ट होता चला जाएगा। कामेंद्रिय की इच्छाएं जितनी तीव्र होती जाएंगी, यह दाद उतना ही ज्यादा खुजलाता चला जाएगा। ब्रह्मचर्य की शक्ति,
मनुष्य के भीतर एक विद्युत धारा रहती है, एक तेज रहता है, एक शक्ति रहती है जो आंखों में टॉर्च के तरीके से चमकती है। शेर अपनी मांद में बैठा हुआ होता है, अंधेरे में देखता है, उसकी दोनों आंखें बिजली की टॉर्च की तरीके से चमकती हैं। बिजली के तरीके से, टॉर्च के तरीके से आंखों में चमकने वाली चीज हमारे पास है, और उस चीज का नाम है ब्रह्मचर्य। वह टॉर्च वाली विद्युत हमको कब मिल सकती है? जब हमको अपनी इंद्रियों पर और अपने विचारों पर काबू करना आ जाएगा। टॉर्च की वह रोशनी हमको तब मिल सकती है जब हम अपनी जबान की नोक से प्रभावशाली शब्दों का उच्चारण करते चले जाएं। तब हमारे शब्द लोगों के हृदय में प्रवेश करते हुए चले जाएंगे।
मित्रों, हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारी वाणी, हमारी स्मरण शक्ति, हमारा प्रभाव, यह सारी की चीजें कौन खा जाता है?
आप जानते हैं,
हाँ, एक दाद खा जाता है, और वह दाद है हमारी कामेंद्रिय के ऊपर खुजली मचाने वाला। उसने हमारी जिंदगी को खा लिया।
बच्चे और बच्चियां नौजवान थे, 20 साल के थे, 18 साल के थे, 22-23 साल के थे। देखने में ऐसा मालूम पड़ता था कि सबकी आंखें जाकर के उसी पर पड़ती थीं।
यह लड़का कैसा खूबसूरत है, यह लड़की कैसी खूबसूरत है। एक दो साल बाद शादी हो गई, खेल तमाशे किए।
खेल तमाशे के बाद देखा कि आंखों के नीचे गड्ढे में काले खा गई, कमर में दर्द होने लगा, रीढ़ में दर्द होने लगा,
याददाश्त कम होने लगी,
आंखों में से कीचड़ आने लगा,
पेट खराब रहने लगा, सिरदर्द की शिकायत रहने लगी। आखिर यह क्या हुआ,
कैसे हुआ?
2 वर्ष पहले जो तन सुंदर और स्वस्थ था, जिसका स्वास्थ्य ऐसा श्रेष्ठ मालूम पड़ता था, शरीर बलिष्ठ मालूम पड़ता था, आखिर इसके अधेपिन का जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार था वह दाद जो हमारे कामेंद्रिय की नोक पर विद्यमान था, और जिसको खुजाने से पहले हमने यह ख्याल नहीं किया कि यह खुजली हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। मन की समस्या, तृष्णा। मित्रों,
प्रेम, बाहरी जीवन का प्रिय, जो देखने के समय तत्काल हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद यह बड़ा मजेदार है, लेकिन क्या वह सचमुच मजेदार है? नहीं, मजेदार नहीं है, वह हमको नरक की ओर घसीट कर ले जाने वाला है। हमारे दिमाग में भी एक बात है, मन हमारी 11वीं इंद्रिय कहलाता है, और इस मन में भी एक दाद है, एक खाज है। उस दाद और खाज का क्या नाम है?
इसका नाम है तृष्णा।
तृष्णा उस चीज का नाम है जो मनुष्य की आवश्यकता भर की चीजें होने पर भी शांत नहीं होती। उसके भीतर से यह चीजें पैदा होती रहती हैं कि अभी और, अभी और,
अभी और चाहिए, अभी और कभी पूरा होगा क्या,
नहीं, कभी पूरा नहीं हो सकता। आदमी जानता है कि इन चीजों की हमको जरूरत नहीं है। इसके बिना भी हमारा काम आसानी से चल सकता है, पर तृष्णा की आग न जाने कैसी है, जो कि आगे बढ़ती चली जाती है। आदमी यह जानता रहता है कि तृष्णाओं की पूर्ति में हमारा कीमती और बहुमूल्य समय खर्च होता चला जा रहा है, लेकिन आदमी चूकता नहीं है और उसका मन मानता नहीं है।
मित्रों,
गौतम बुद्ध के पास एक लड़की आई और बहुत जोर से रोने लगी।
बुद्ध ने पूछा, क्या बात है, लड़की रोती क्यों है?
उसने कहा, पिताजी मुझे बहुत कष्ट है और बहुत दुखी हूँ। उन्होंने कहा, बच्ची क्यों रोती है, तू बता तो सही, मैं तेरा दुख दूर करूँगा। उसने कहा, 7 वर्ष हो गए, मेरे पेट में बच्चा आ गया। वह न पैदा होता है, न निकलता है, न मरता है, न जिंदा होता है। 7 साल से मुझे बड़ा कष्ट है, मेरे पांवों में सूजन आ जाती है और मुझे बड़ा कष्ट होता है और न जाने क्या क्या हो रहा है। बस मैं मरती नहीं हूँ और मेरे सब काम हो जाते हैं।
गौतम बुद्ध ने कहा, बच्ची हम तुझे आशीर्वाद देंगे और तेरा दुख दूर हो जाएगा। बस उन्होंने आशीर्वाद दिया और अगले महीने बच्चा पैदा हो गया। बच्चा भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से पैदा हुआ था।
बहुत सुंदर था, देखने में खूबसूरत, बड़ा चंचल और बड़ा हंसने वाला था।
लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया, 3-4 वर्ष का हो गया। बुद्ध भगवान का दोबारा उस गांव में से निकलना हुआ। उन्हें ख्याल आया कि अरे भाई,
यह तो वही गांव है।
कौन सा?
जहां एक लड़की आई थी और कहती थी कि 7 साल का हमारे पेट में बच्चा है। अब चलो देखें कि उसके बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, जिंदा है कि मर गया।
उन्होंने कहा, महाराज जी
आप बैठिए, हम बुलाकर लाते हैं।
मित्रों, वे लोग गए और लड़की को बुलाकर लाए। बुद्ध भगवान ने कहा, बच्ची
वह तू ही है जिसके पेट में 7 साल का बच्चा बैठा हुआ था और तेरे पांव में सूजन आ गई थी और तेरा मुंह सूज गया था और तू मरने को थी। तू वही लड़की है?
उसने कहा, हाँ महाराज जी,
मैं वही लड़की हूँ। तो फिर तेरा बच्चा कहाँ है? उसने बच्चे को उनके चरणों में रखा और बोली, यही मेरा बच्चा है।
3 साल का बच्चा था।
बहुत अच्छा, बहुत खेलने वाला, बहुत खुश और बड़ा प्रसन्न और आनंदी जीव, कभी देखो तो यहाँ खेलता तो कभी वहाँ खेलता।
बुद्ध भगवान ने पूछा, अगर ऐसे ऐसे लड़के तुझे सही में मिलें, तो तू कितनी बार गर्भ धारण कर सकती है? लड़की ने कहा, भगवान
ऐसे लड़के मुझे मिल जाएं तो मैं कम से कम 5 बच्चे और पैदा कर सकती हूँ।
इतना कष्ट उठा सकती हूँ और 5-7 बच्चे पैदा कर सकती हूँ। बुद्ध ने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद देख, इसको कहते हैं प्रिय।
मनुष्य जानता है, समझता है, लेकिन जानते हुए भी, समझते हुए भी किस तरीके से उस तृष्णा की भावना में घिसता हुआ चला जाता है। इसी का नाम नरक है और इसी का नाम तृष्णा है।
योग चित्तवृत्ति निरोध। मित्रों, आध्यात्मिक शिक्षण में योगाभ्यास में पहला पाठ हमको यह बताया गया, योग चित्तवृत्ति निरोध। यहाँ इसका मतलब लोगों ने गलत समझ लिया है। इसका मतलब यह समझ लिया है कि ध्यान एकाग्र हो जाए। ध्यान का एकाग्र होना न होना कोई खास मतलब नहीं रखता। लोग बार बार कहते हैं कि ध्यान एकाग्र नहीं होता। अरे बाबा,
नहीं होता तो मैं क्या करूँ? सकस में कार्य करने वाली लड़कियों का ध्यान एकाग्र होता है। वे तार के ऊपर चलती हैं। तार के ऊपर चलते समय लड़कियां अपना दिमागी बैलेंस इतना सही रखती हैं कि जहां कहीं भी शरीर हिलता डुलता है, छाता हाथ में रहता है और वे अपने बैलेंस को मिनटों में संभाल लेती हैं।
उनका ध्यान बहुत एकाग्र होता है। ध्यान एकाग्र न हो तब सकस का खेल दिखाना नामुमकिन है।
झूले पर से एक आदमी उछलता हुआ आता है और दूसरे वाले झूले को पकड़ता है।
अगर एकाग्रता न हो, यदि यह मालूम न हो कि मेरे शरीर का बैलेंस, मेरी छलांग और उस झूले का यहाँ तक आना, इसमें कितना फर्क है, तो वह आदमी झूले को नहीं पकड़ सकता है और वह नीचे गिरेगा और उसके दांत टूट जाएंगे। मित्रों, एकाग्रता किसको आ गई?
सकस में तार पर चलने वाली लड़की को आ गई, तो क्या वह योगी हो गई,
महात्मा हो गई, ज्ञानी हो गई?
उसे आत्मसाक्षात्कार हो गया कि नहीं हो गया?
कुछ भी नहीं हुआ। अकाउंटेंट जो बढ़िया वाले हिसाब रखते हैं, सब एकाग्रता वाले होते हैं। एकाग्रता न हो तो सारा हिसाब गड़बड़ हो जाए।
मुझे कई बार हिसाब के नियम बनाने पड़ते हैं, मैं बार बार भूल जाता हूँ। दूसरा आदमी कहता है कि पंडित जी, जरा सी देर में मैं हिसाब लगा देता हूँ, और झट से आने और पाई का हिसाब लगाकर कहता है कि देखिए हमारी यह गलती हो जाती थी।
ठीक है,
मालूम पड़ जाता है।
एकाग्रता न हो तो कुछ बनता बिगड़ता है क्या?
कुछ बनता बिगड़ता नहीं, लेकिन जहाँ योगाभ्यास के लिए बात बताई गई है, वहाँ चित्त का एकाग्र होना अच्छा तो है, बुरा तो नहीं है, पर उसके ऊपर आत्मा की उन्नति और प्रगति रुकी हुई नहीं है।
आत्मा की उन्नति और प्रगति जिस बात पर रुकी हुई है, वह है चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां क्योंकि शरीर मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि शरीर जड़ प्रकृति का बना हुआ है।
चूंकि शरीर का जन्म और शरीर का नेचर, शरीर का हिस्सा और शरीर का प्यार उसी से है जहां से यह पैदा हुआ है, इसलिए खानदान की बात होती रहती है।
मित्रों, लड़कियां अपने माँ बाप का गुण गाती रहती हैं। पजी,
हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं और हमारे भैया बहुत अच्छे हैं और हमारी भावज तो बहुत ही अच्छी है।
हमारी भावज ने ऐसा किया।
वह अपनी तारीफ करती रहती है, अपने मायके वालों की तारीफ करती रहती है और ससुराल वालों की। अजी, तुम मालदार हो तो क्या, हमारा बाप गरीब थोड़े ही है। जब कहेगी तब अपने बाप की प्रशंसा की बात कहेगी।
कहाँ, ससुराल में जाकर के?
इसी तरीके से वह भी एक औरत है जो अपने मायके वालों की तारीफ करती रहेगी। जब कभी भी करेगी उन्हीं की तारीफ करेगी। हमारा शरीर जिस चीज का बना हुआ है, हमारा मन जिस चीज का बना हुआ है, वह क्या है? हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है, आग का बना हुआ है, पानी का बना हुआ है या हवा का बना हुआ है। इसलिए दुनिया में जो जो चीजें हैं, उन चीजों को पाने के लिए यह मन हमारी ओर खिंचाव डालता रहता है, क्योंकि हमारा मन जो है वह भी उसी का हिस्सा है।
यह हमारा प्रिय मार्ग है,
इसमें रस्साकशी चलती रहती है।
जीवन है एक रस्साकसी। मित्रों,
बच्चों में रस्साकसी होती है, एक रस्सा डाल देते हैं, रस्साकसी होती है जिसमें थोड़े लड़के इधर हो जाते हैं और थोड़े लड़के उधर हो जाते हैं। खींचातानी होती है, जो समूह जोरदार होता है वह खींच ले जाता है, बाकी रह जाते हैं। जीवन भी एक रस्साकसी है।
इसमें एक है हमारा प्रिय।
प्रिय की ओर हमारी यह दसों इंद्रियां हैं, पांच तत्व इसके अंदर हैं, एक मन है। कितने छोकरे हो गए मन के?
10 लड़के एक, 5 लड़के एक, 1 लड़का एक, मन एक।
इस तरीके से 16 लड़के हो गए।
एक और बेचारा मन, बेचारी आत्मा और बुद्धि, चित, अहंकार, चारों एक और।
इन 16 और 4 की रस्साकसी है। इन 16 और 4 की रस्साकसी में से जहां कहीं भी 4 की ओर खींचकर ले जाए तो जानना चाहिए कि वे बहादुर आदमी थे, समझदार आदमी थे।
इन्होंने 16 आदमियों को गिरा दिया। मित्रों, यही दो रास्ते हैं जो मुझे पहले दिन बताए गए और मुझे यह सिखाया गया, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अर्थात असत की ओर नहीं, सत की ओर चल, अर्थात आध्यात्मिक जीवन की ओर चल,
आदर्शों की ओर चल,
उत्कृष्टता की ओर चल, मानवीय उद्देश्यों की ओर चल।
हम मनुष्य हैं तो कर्तव्यों को मानना पड़ेगा, आदर्शों को मानना पड़ेगा, उत्कर्षों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं तो शरीर को खाना देना पड़ेगा, क्योंकि हमने ब्याह किया है तो स्त्री बच्चों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन वह केवल सांसारिक कर्तव्यों के तरीके से करना पड़ेगा। सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने में आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती,
कोई खास दिक्कत नहीं होती।
ड्रामे में बहुत सारे नट काम करते हैं, कोई सफाई कर्मचारी बन जाता है और कोई राजा बन जाता है। कर्मचारी को यह शिकायत नहीं कि मुझे सफाई कर्मचारी बना दिया गया और सबके सामने मेरी तौहीन कर दी गई और मेरी नाक कट गई, मैं सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया और मुझे झाड़ू लगानी पड़ी और तुम राजा साहब बन गए। राजा साहब बन गए तो क्या,
कर्मचारी बन गए तो क्या, यहाँ तो ड्रामा है।
हम सब यहाँ नौकर हैं, तुमको भी 125 मिलते हैं और हमें भी 125 मिलते हैं, हम दोनों एक हैं और ड्रामा करते हैं।
जीवन को माने एक रंगमंच। मित्रों, आदमी को शिकायत कब नहीं हो सकती?
जब उसको यह मालूम हो कि हम ड्रामा कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, दुनिया में बहुत सारी असुविधाएं भरी पड़ी हैं, इनसे आदमी को क्या कोई तकलीफ होनी संभव है? नहीं, तकलीफ होनी बिल्कुल संभव नहीं है। दुनिया में अभाव, कष्ट, दैख और दर्द भरा हुआ पड़ा है। सद्गुरु इन सारी की समस्याओं का समाधान करना जानता है। जैसे कि पहले दिन गायत्री महामंत्र को स्मरण करते हुए मेरे गुरुदेव ने कपाट के तरीके से मेरे मन से इन चीजों को हटा दिया।
जब वह कपाट मेरे भीतर से हटा तो मुझे केवल खुशहाली दिखी, फिर मुझे दुनिया में कोई दिक्कत मालूम नहीं पड़ी।
फिर मुझे मालूम नहीं पड़ा कि यह दुनिया डखों से भरी हुई पड़ी है और मुझे मेरी ख्वाहिशों ने तंग करना बंद कर दिया।
मेरी ख्वाहिशों की दिशा बदल गई।
पहले मेरी ख्वाहिशें धन के संबंध में थीं, पहले मेरी ख्वाहिशें इंद्रियों के भोग के संबंध में थीं, पहले मेरी ख्वाहिशें अपना अहंकार और अपना गौरव दूसरों के ऊपर हावी करने के संबंध में थीं।
मित्रों, आमतौर से मनुष्य की तीन इच्छाएं होती हैं, एक को पुत्रेषणा कहते हैं,
दूसरी को वित्तेषणा कहते हैं और तीसरी को लोकेषणा कहते हैं। ऋषियों ने पुत्रेषणा को स्वसृष्टि जैसे शब्दों से संबोधित किया है, इसलिए मैंने इसको पुत्रेषणा ही कहना मंजूर किया है।
यह बात ठीक है कि हमारे यहाँ ब्याह शादियों में मुख्य उद्देश्य पुत्रेषणा माना जाता है,
बच्चे पैदा करना माना जाता है।
इसलिए इसको मैं स्वयं सृष्टि कहूंगा। मनुष्य की एक बहुत बड़ी तीव्र ख्वाहिश होती है और उस तीव्र ख्वाहिश का नाम है सृष्टि, और दूसरी चीज है आदमी की वित्तेषणा, जिसको तृष्णा कहते हैं।
हर आदमी अमीर बनना चाहता है, पर अमीर कहाँ हो पाता है? हम गरीब देश में रहने वाले लोग हैं। राम मनोहर लोहिया के कहने के मुताबिक यहाँ हर आदमी की आमदनी 3 आने रोज है, और पंडित नेहरू के कहने के मुताबिक हर आदमी की आमदनी 12 आने रोज है।
जहाँ आदमी की 3 आने रोज और 12 आने रोज की आमदनी हो, और आदमी यह ख्वाब देखता हो, यह सपना देखता हो कि अमीर होकर के जीऊंगा, मालदार होकर के जीऊंगा, रईस होकर के जीऊंगा, सामंत होकर के जीऊंगा, राजा होकर के जीऊंगा,
इस तरह के गलत ख्वाब देखता है।
क्यों?
क्योंकि मित्रों, हमारा सारा का देश गरीब है, और गरीबों के तरीके से ही बाकी लोगों को रहना चाहिए। अगर गरीबों के तरीके से बाकी लोग नहीं रहेंगे तो उससे परेशानी पैदा होगी।
दूसरे डाकू पैदा हो जाएंगे, चोर पैदा हो जाएंगे, उसका साला आएगा, बहनोई आएगा, भतीजा आएगा, गांव वाला आएगा, पुलिस वाला आएगा, और हर एक को तंग करने की कोशिश करेगा।
जहां मांस रखा होता है वहां चील कौवे आते हैं, वहां गिद्ध आते हैं, कुत्ते आते हैं, कीड़े आते हैं, सब दुनिया भर के जीव आते हैं जहां फालतू मांस रखा रहता है। इसी प्रकार जहां कहीं भी फालतू धन रखा रहेगा मित्रों, वहां सारी की मुसीबतें आएंगी। और जिस आदमी की यह ख्वाहिश है कि हम गरीब देश में अमीर होकर के रहेंगे, वह गलत ख्वाहिश वाला है।
बदल जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। मित्रों,
मैं बहुत दिनों पहले से कहता आ रहा हूं, मेरी बात चाहे माना चाहे न माना, अगले वाले साल बहुत तेजी से बढ़ते हुए चले आ रहे हैं।
हिंदुस्तान में रूस के ढंग का साम्राज्य भले ही न आए, पर हिंदुस्तान के ढंग का साम्राज्य जरूर आकर के रहेगा, और तब हर आदमी की आज की आर्थिक स्थिति और हर आदमी की माली हालात एक जैसी हो जाएगी। क्या गरीब क्या अमीर, दोनों को एक ही ढंग से खाना मिलेगा,
दोनों को एक ही ढंग से गुजारा करना पड़ेगा, ऐसी मजबूरी आएगी। मेरे कहने से भले न आए, पर ऐसी मजबूरी आएगी अवश्य। मिश्रे और प्रेय की बात कहूंगा, आप मेरी बात मजाक में भले ही उड़ा दें, मैं कब कहता हूं कि आप मेरी बात माने, लेकिन एक बात मैं हर बार कहूंगा, हर दिन कहूंगा कि अगले थोड़े दिनों के पीछे जो चीज आने वाली है वह है कि हर आदमी, गरीब और अमीर, समानता की स्थिति में आ जाएगा। आदमी को खाने पीने की चीजें उतनी मिलेंगी जितनी की बाकी लोगों को मिलती हैं। हर आदमी को उतनी ही मशक्कत करनी पड़ेगी जितनी की बाकी लोगों को करनी पड़ती है। इसलिए मैंने लोगों से यह कहा है,
दृष्टिकोण का परिवर्तन एकमात्र समाधान। मित्रों,
मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा कि अपनी ख्वाहिशों और तमन्नाओं के स्तर को बदल दें। अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशों के स्तर को आदमी जैसे जैसे बदल देता है, वैसे वैसे सिर पर रखे पत्थर भी गुम हो जाते हैं, और शंकाएं दूर हो जाती हैं, क्लेश दूर हो जाते हैं, और कष्ट दूर हो जाते हैं।
जो चीजें पहले बड़ी कष्ट देने वाली मालूम पड़ती थी, वे बहुत ही खुशनुमा और अच्छी स्थिति में मालूम पड़ती हैं।
दुनिया में हमारे छोटे छोटे नुकसान हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा कलेजा निकल गया और हमारे ऊपर मुसीबत आ गई, लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण बदल दिया जाए तो मित्रों,
हमको कोई दिक्कत मालूम नहीं पड़ती और कोई कष्ट मालूम नहीं पड़ता। मित्रों, खलीफा हारून रशीद के 2 बच्चे थे और दोनों बड़े प्यारे थे।
जब वे खाना खाते थे तो दोनों बच्चों को साथ लेकर के खाते थे। जब तक दोनों बच्चे नहीं आ जाते तब तक वे खाना नहीं खाते थे। अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई ऐसी बीमारी आई कि जिसमें दोनों बच्चे घंटे भर के अंदर समाप्त हो गए, दोनों की मृत्यु हो गई।
उनकी बीबी बड़ी समझदार थी, आध्यात्मिकता के इन सिद्धांतों को समझ गई थी।
आप सुने हैं समझे नहीं, सुनने और समझने में जमीन आसमान का फर्क है। सुनी तो आपने रामायण भी है, सुनी तो आपने गीता भी है, सुनी तो आपने भागवत कथा भी है, सुना तो आपने न जाने क्या क्या है, पर इस सुनने से कुछ फायदा नहीं है।
समझने से फायदा तब है जैसे कि उनकी औरत ने अध्यात्म को समझा था, इसलिए उसने कहा, खलीफा आते होंगे, तमाम दिनों के थके होंगे,
बच्चों की मौत की बात मालूम पड़ेगी तो खाना नहीं खाएंगे, और बेचारों को जो काम करना है रात को काम नहीं कर पाएंगे।
इसलिए मित्रों,
उसने सोचा कि ऐसा करना चाहिए कि जब तक कि वे खाना नहीं खा लेते और अपने काम से निवृत्त नहीं हो जाते और नमाज नहीं पढ़ लेते, तब तक मुझको यह बात नहीं कहनी चाहिए।
मन में निश्चय से कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा।
उसने दोनों मरे हुए बच्चों को भीतर वाले कमरे में ले जाकर एक चारपाई पर सुला दिया, ऊपर से कपड़ा डाल दिया।
खलीफा शाम को आए,
उसने खाने के लिए थाली रखी।
खलीफा ने कहा, बच्चे कहाँ गए?
उसने कहा, बच्चे कह गए हैं कि पिताजी से कह देना कि आज हम देर से आएंगे, पिताजी खाना खा लें। उन्होंने कहा ढूंढ कर लाओ।
पत्नी ने कहा मुझे तो मिलेंगे नहीं, कहाँ चले गए हैं।
तुम भी थके हुए हो और मेरी भी तबीयत ढीली है, मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं।
तुम खाना खा लो ना, मैं उनको खिला दूंगी। कैसे खलीफा हो, कैसे गुरु हो,
बच्चों का मोह दूर नहीं करते हो।
मित्रों, उन्होंने खाना खा लिया।
वे खाना खा रहे थे और बीबी पंखा कर रही थी।
खाने के बाद बीबी ने एक बात पूछी, खलीफा जी। हाँ, आपको एक बात सुनाऊं। उन्होंने कहा हाँ सुनाओ। बीबी ने कहा ऐसा था कि 2 महीने पहले मैं पड़ोसी के यहाँ से हाथों के जेवर कड़े मांग कर लाई थी। पड़ोसिन के घर सोने के अच्छे जेवर बनकर आए थे।
मैंने उन्हें हाथों में पहना तो उन पर मेरी बड़ी तबीयत आए और मैंने कहा कि यदि ये जेवर मुझे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। सवेरे मैं अपनी पड़ोसिन के पास गई और उससे कहा बहन, तेरे पास तो जेवर हमेशा रहेंगे, तू कुछ दिनों के लिए मुझे दे दे, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं जेवर पहनूं।
मेरी पड़ोसिन बड़ी अच्छी थी, उसने कहा बहन तुम पहन लो।
उसने दोनों जेवर दे दिए और मैंने दोनों कड़े हाथों में पहन लिए और बहुत दिनों तक उन्हें पहन कर रखा।
खलीफा ने कहा अच्छा, तो फिर वह पड़ोसिन का लाई थी तो क्या कहती थी।
पड़ोसिन यह कहती थी कि अब तक तुमने जेवर पहन लिए, अब वापस कर दे।
फिर उसने कहा खलीफा आप बुरा मत मानना।
क्या बात है, मेरा तो मन यह कहता है कि अब मैं गहने दूंगी नहीं।
खलीफा ने कहा वाह,
तू बड़ी बेवकूफ औरत है। उस बेचारी ने 2 दिन के लिए तेरे पास जेवर पहनने के लिए दे दिए और तेरी तो यह नीयत है कि मैं उसको जेवर वापस नहीं दूंगी। पत्नी बोली बात यह है कि मैं जेवर उतार कर दे दूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है और जी में आता है कि ये जेवर मेरे पास ही रहें। 2 महीने पहन लिए, अब तो ये मेरे हो गए और अब मैं नहीं चाहती कि इनको वापस दूं, मैं नहीं दूंगी।
खलीफा ने कहा दे दे उसके जेवर, पराई चीज है।
अपने को इतने दिन पहनने को मिल गए वह काफी है, इसमें हर्ज की क्या बात है। जितने दिन के लिए मिल गए वह ठीक है, जितने दिन आनंद उठा लिया वही ठीक है, अब जिसकी चीज है उसके हाथ में दे दो ठीक है।
हमको क्या सलाह देती हो, हम खलीफा हैं और तुम हमारी बीबी हो।
तुम ऐसा काम करेगी तो दुनिया हमको क्या कहेगी।
मित्रों, उसने कहा तो फिर क्या करना चाहिए।
सच्ची बात तो यह है कि मेरा मन तो कहता है कि मैं दूं ही नहीं और यह कह दूं कि जेवर मेरे हैं, मैं नहीं दूंगी।
उन्होंने कहा तुम गलत हो,
खाना खाने के बाद जाओ और उसके जेवर दे करके आओ। अच्छी बात है, दे आऊंगी आप कहते हो तो। उसने कहा मुझे रोना आ गया, तब तो खराब बात है, मेरी आंखों में आंसू आएंगे, मैं रोऊंगी। रोएगी तो मैं तुझे धमकाऊंगा कि तू ऐसे क्यों रोती है, दूसरे की चीज के लिए रोती है, पराई चीज के लिए रोया जाता है क्या। 2 महीने पहन लिए, अब जेवर दे दे ठीक है।
खलीफा ने कुल्ला कर लिया। पत्नी ने कमरे का दरवाजा खोला जहां दोनों बच्चे मरे पड़े थे।
उसने कपड़ा उठाया और देखा तो दोनों बच्चों की लाशें पड़ी थीं।
खलीफा रोने लगे, खलीफा की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने कहा अभी तो आपने कहा था ना कि पराया जेवर जो मांग कर लाई थी मौज से पहने अब वापस कर देना चाहिए, वापस करने के वक्त रोना आएगा तो तुम्हें धमकाऊंगा, चांटा मारूंगा, समझा दूंगा। अब अपने आप को समझाइए ना।
ये बच्चे ये खिलौने खेलने के लिए दिए थे और अगर अब इन खिलौनों की दूसरों को जरूरत है तो इन्हें दूसरों को दे दिया जाना चाहिए। खलीफा चुप हो गए और दोनों लाशों को उठाया गया और शमशान में दफन करने के लिए भिजवा दिया गया।
अस्तो मा सद्गमय। मित्रों,
बात इतनी भर है कि हमको दुनियावी डैख और दुनियावी कष्ट इसी तरह के होते रहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे डैख और असुविधाएं होती रहती हैं। पैसों की ख्वाहिश, बच्चों की ख्वाहिश और कामवासना की ख्वाहिश, यही 3-4 ख्वाहिशें रहती हैं जो हमको भगवान की ओर विचार करने से, भगवान की शक्तियां पाने से हमें महरूम कर देती हैं और हमारे रास्ते को रोक करके खड़ी हो जाती हैं और हमारे मन को वहां जाने नहीं देती। अपने जीवन के लिए जो महानतम कर्तव्य हैं उनको करने से हमको रोक देती हैं और यह कहती हैं कि तुमको सारा का वक्त और जो अक्ल मिली है उन्हें इन कामों में खर्च करो। इस तरह से दूसरे कामों के लिए फालतू वक्त बचता हो तो देख लेना। पूजा उपासना के लिए किसी महीने में खाली वक्त बचता हो तो देख लेना।
हनुमान चालीसा कर लेना, गायत्री का अनुष्ठान कर लेना।
फुर्सत नहीं है तो झंझट में पड़ने से क्या फायदा, यह तो फुर्सत का काम है।
जब फुर्सत मिले तो कर लेना चाहिए, जब फुर्सत न मिले तो नहीं करना चाहिए।
फुर्सत उस चीज के लिए है जो इंद्रियों की ख्वाहिश को पूरा कर सके और फुर्सत उन कामों के लिए है जो हमारी तृष्णाओं को पूरा कर सके।
मित्रों,
क्या किसी की तृष्णाएं पूरी हुई?
नहीं,
किसी की पूरी नहीं हुई।
एक बार ऐसा हुआ कि हनुमान जी समुद्र लांघ करके लंका जाने वाले थे। रास्ते में एक राक्षसी मिली।
उसने कहा कि देखूं तो सही कि यह बंदर समुद्र को लांघने की हैसियत रखता है या नहीं, कहीं यह बंदर ऐसा तो नहीं कि राक्षस आए और यह डरकर चला जाए, ऐसा तो नहीं कि यह लंका में जाए और रावण इसको मार डाले। देखूं तो सही कि यह बंदर इस काबिल भी है कि नहीं है कि समुद्र में छलांग लगा सके और राम का काम कर सके,
लंका को पछाड़ सके और रावण का मुकाबला कर सके।
देखूं इसकी हैसियत भी है कि नहीं।
हनुमान जी का इम्तिहान लेने के लिए एक राक्षसी समुद्र में बैठ गई। उसका नाम था सुरसा। सुरसा ने हनुमान को खाने के लिए मुंह फाड़ा। हनुमान ने अपना बदन बढ़ा लिया। उसका मुंह जितना बड़ा था हनुमान उतने बड़े हो गए। फिर से उसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया, हनुमान फिर उतने बड़े हो गए। बार बार यही चलता रहा और हनुमान बराबर बढ़ते हुए चले गए। मित्रों,
सुरसा पहाड़ के बराबर हो गई और हनुमान भी उतने ही बड़े हो गए। फिर उन्होंने देखा कि मैं कहाँ तक बढ़ूंगा, इससे इस तरह से तो कहीं छूटने वाला नहीं हूँ, यह तो खा ही जाएगी और मैं कहाँ तक बढ़ूंगा। हनुमान की समझ में एक नई तरकीब आई।
उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अपना बदन और जिस्म छोटा कर लिया, मसक समान रूप कपी धरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप धरा और उसके मुंह में होकर बाहर आ गए। यह गए, वह गए और सुरसा मुंह फाड़ती रह गई। उसका बादल जैसा मुंह फटाका रह गया और हनुमान ये गए और वो गए। मित्रों, मनुष्य अपनी तृष्णाओं को थोड़ा सा सीमाबद्ध कर ले, फिर देखिए आदमी के पास कितनी शक्ति बच जाती है,
कितनी ताकत बच जाती है और कितनी चीजें बच जाती हैं।
उन चीजों के द्वारा आदमी अपना भला कर डाले और सारे विश्व का भला कर डाले। पहले दिन मेरे गुरुदेव ने मुझे यही सिखाया, अस्तो मा सद्गमय, अर्थात असत की ओर नहीं सत की ओर चल।
असत का शिक्षण दीवार की तरह है। जब हम किसी बड़े महल की दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं तो महल चुपचाप कहता है, अरे इसने पैसा कमाया और इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर ली और देख कैसा बढ़िया सोफा है और क्या बढ़िया बिजली के पंखे चलते हैं। आ, तू भी ऐसा ही कर, आ जा चुपके से, क्या क्या करना पड़ा था, ऐसे ही मकान बना लिया। दीवार चुपचाप खड़ी है, बोलती नहीं, बात नहीं करती,
हिंदी भी नहीं जानती, अंग्रेजी भी नहीं जानती,
टेलीफोन भी नहीं है,
चुपचाप कह देती है मैं जी रही हूँ बस।
आओ सबका स्वागत है और वह मोटर अपने आप को सिखाती है कि हरम एल ए और हरम पी और हर अफसर मुझे यही बात कहता है कि इस रास्ते पर चलो, उस रास्ते पर चलो। हर जगह से लाखों पुकार और लाखों आवाजें आती हैं कि चलने का रास्ता प्रिय है।
मित्रों, गायत्री महामंत्र का पहला चरण जब हमें सिखाया गया तो मुझे यह सिखाया गया, अस्तो मा सद्गमय, अपनी विचारणा को सत्य की ओर मोड़, और मैंने अपनी विचारधारा को सत्य की ओर मोड़ दिया। मैं भूखा मरा?
नहीं, मैं कभी भूखा नहीं मरा,
मुझे दोनों वक्त रोटी मिली।
क्या मैं नंगा रह गया? नहीं, मैं किसी दिन नंगा नहीं रहा, कपड़े मैंने बराबर पहने। क्या मैं खुले में सोया?
बरसात मेरे सिर पर गिरी?
नहीं, बरसात मेरे सिर पर नहीं गिरी, मैं छाया के नीचे सोया, ठंडक में भी छाया के नीचे सोया। आप जिस तरीके से छाया में सोते हैं मैं ठीक उसी तरह सोता हूँ, और आप जिस तरीके से चार रोटियाँ खाते हैं मुझे भी उसी तरह से पूरी रोटियाँ मिलती हैं। मैं उतने ही कपड़े पहनता हूँ जितने कि आप कपड़े पहनते हैं। आपसे मैं गरीब हूँ क्या? आपसे मैं पिछड़ा हुआ हूँ क्या? नहीं, मैं पिछड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं ठीक उसी तरह का हूँ जितना कि सारे विश्व का हर नागरिक जिस तरह का जीवनयापन करता है, उससे कम सुविधाएं नहीं हैं।
दृष्टिकोण बदलने से मिलते हैं भगवान। लेकिन मित्रों,
क्या फर्क पड़ गया?
फर्क यह पड़ गया कि मेरी विचारणाओं, मेरी आकांक्षाओं, मेरी इच्छाओं ने दिशाएं बदल दी।
दिशाएं बदलकर जब मैंने देखा तो मुझे यह मालूम पड़ा कि दुनिया में कोई डैख नहीं है,
दुनिया बड़ी सुखी है,
इसमें केवल स्वर्ग भरा हुआ है और दुनिया में केवल आनंद है, दुनिया में केवल संतोष है और दुनिया में केवल शांति है।
मैंने केवल शांति को देखा, अशांति को नहीं, मैंने दुनिया में सुख को देखा, दुख को नहीं,
दुनिया में मैंने संतोष को देखा, असंतोष को नहीं। मेरी आंखों में अलग तरह का चश्मा लगा दिया गया तो मैंने सारी की सारी दुनिया को पीले रंग की तरह देखा और मुझे यह मालूम पड़ा कि सारी दुनिया पीले रंग की है। अपना दृष्टिकोण बदल लेने के बाद आदमी न जाने कितना खुश, कितना प्रसन्न और कितना संतुष्ट बन सकता है। जिस आदमी ने अपनी दिशाएं बदल दी और जिस आदमी ने अपनी इच्छाएं बदल दी, उसके काम करने का ढंग ऐसा बेहतरीन हो जाता है कि उसके काम करने के ढंग को देख करके भगवान खींचा हुआ चला आता है।
मित्रों,
भगवान कहता है कि मेरे पास मदद बहुत दिनों से सुरक्षित रखी हुई है और मैं मदद दूंगा। अर्जुन जब भगवान का काम करने के लिए खड़ा हुआ तो भगवान ने कहा मैं तेरे घोड़े चलाऊंगा। और जब समुद्र मंथन का महाकार्य हुआ और देवताओं ने इसे अपने जिम्मे लिया और मंदराचल पर्वत जमीन के नीचे खिसकने लगा, तो भगवान ने कहा मैं कछुए का रूप बना करके अभी आता हूँ और मंदराचल पहाड़ को अपनी पीठ पर रखूंगा और तुम्हारे समुद्र मंथन की प्रक्रिया को पूरा करूंगा।
भगवान बुद्ध बढ़ती हुई हिंसा को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो गए थे।
उन्होंने कहा दुनिया में पाप और अनाचार, जीवों के प्रति हिंसा ज्यादा फैली हुई है, मैं इसको दूर करूंगा। मुझे सामान की जरूरत है और मुझे सहकारियों सहायकों की जरूरत है। आवश्यकता इस बात की हुई कि पैसा पास में नहीं है, अपनी सेना कहाँ से खड़ी करेंगे, खिलाएंगे कहाँ से,
ऐसे आदमी आएंगे तो मुश्किल पड़ जाएगी,
काम कैसे चलेगा। भगवान करते हैं इंसान का सहयोग। बुद्ध विचार करने लगे कि वैदिक हिंसा और सारे विश्व में समव्याप्त पाप का मुकाबला करने के लिए खड़ा होऊंगा तो मेरे पास साधन कहाँ है,
साधन कहाँ से आएंगे। एक छोकरा भागता हुआ चला आया।
उसने कहा पिताजी, मेरा सारा का सारा धन आपके चरणों पर न्योछावर है।
उसका नाम था अशोक।
भगवान अशोक के रूप में आए और अशोक के रूप में आ करके कहा हम तेरी मदद करेंगे और तेरे महान कार्य को संपन्न कराएंगे। अशोक बुद्ध के यहाँ आए और बुद्ध के 2.5 लाख मनुष्यों की सेवा के लिए खाने पीने का इंतजाम हो गया,
ठहरने का इंतजाम हो गया और सारे एशिया में और सारे विश्व में बुद्ध की सेना बुद्धम शरण गच्छामि संघ शरण गच्छामि धम्म शरण गच्छामि का संदेश गुंजाती हुई निकल पड़ी और सारे एशिया को और जहां तक उस जमाने के लोग पहुंच सकते थे उस सारे के सारे इलाकों को बुद्धवाद से आच्छादित कर दिया।
इसके लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ी होगी और अशोक जैसे न जाने कितने व्यक्ति उनकी सहायता करने के लिए चले आए।
मित्रों,
भगवान मनुष्य की सहायता नहीं करता है क्या? हाँ, करता है।
भगवान ने सहायता की थी एक छोटे से नाचीज जानवर की। एक हाथी जोर से एक बार चिल्लाया। उसने कहा भगवान,
मैं पानी में घिसकता हुआ चला जा रहा हूँ और मुझे ग्राह घसीटता हुआ चला जा रहा है।
तबीयत के साथ, मन के साथ, अंतरात्मा के साथ गज ने भगवान को पुकारा और गज की सहायता करने के लिए भगवान दौड़े आए।
भगवान पर अटूट विश्वास करने वाली, भगवान की राहों पर चलने वाली, भगवान को प्यार करने वाली और भगवान के संकेत और आदर्शों पर चलने वाली, भगवान के इशारों पर नाचने वाली मीरा को जब जहर पिलाने की तैयारियां की गईं और कहा गया कि मीरा को जहर पिला दिया जाएगा तो भगवान आए। उन्होंने कहा मेरी नन्ही सी मीरा जहर कैसे पी सकती है,
उसका कलेजा जल जाएगा, उसकी जीभ जल जाएगी, उसका गला जल जाएगा, अपनी मीरा को मैं कैसे जल जाने दूंगा, फिर जहर कौन पिएगा।
भगवान ने कहा जहर पीने के लिए मैं मौजूद हूँ,
मीरा पानी पिएगी और जहर मैं पीऊंगा। जहर भगवान ने पिया और पानी मीरा ने पिया।
भक्त के लिए जहर भी पीते हैं भगवान।
मित्रों, मीरा को काटने के लिए सांप भेजे गए, जहरीले सांप, कोबरा सांप इसलिए भेजे गए कि मीरा को ये काट खाएं और मीरा को मार डालें।
मीरा को काट खाने के लिए सांप आए तो भगवान ने कहा मेरे इशारे पर चलने वाली और मेरे आदर्शों और मेरे संकेतों को पूरा करने वाली मीरा किस तरीके से सांप का जहर बर्दाश्त करेगी। सांप का जहर तो बहुत खतरनाक होता है और आदमी की जान ले लेता है। मेरी मीरा की जान ले ली जाएगी तो मेरे लिए मुश्किल पड़ेगी, और मेरी प्यारी लड़की कहाँ से मिलेगी और मेरे साथ नाचने का दावा कौन करेगा।
मीरा को नहीं मारा जाना चाहिए और मीरा को बचाया जाना चाहिए। सांप काटने के लिए आया और भगवान ने अपनी अंगुली सांप के मुंह में ठूंस दी।
उन्होंने कहा तू इन्हें काट,
ये काटने लायक थी, मीरा को मत काटना। मीरा को सांप ने काटा,
सिर्फ पानी का खून का एक बूंद लेकर रह गया और जहर भगवान की अंगुलियों में चला गया।
मीरा बच गई,
अभागे नहीं, भगवान की कृपा के अधिकारी बने।
मित्रों, भगवान ने हमेशा मनुष्य की हिमायत और सिफारिश की। भगवान ने हमेशा मनुष्य की सहायता की।
प्यासा भगवान इस बात के लिए बैठा हुआ है कि कोई आदमी सामने आए जिसके ऊपर हम अपनी सहायता बिखेर दें। लेकिन हम कंजूस मनुष्य हैं कि अपना मुंह नीचे की ओर किए हुए हैं। अमृत की वर्षा रात भर होती रही और हमारा मुंह ऊपर की ओर न खुल सका। ऊपर की ओर, भगवान की ओर हमारा मुंह खुला होता तो अमृत हमारे मुंह में आया होता और हम अजर अमर हो गए होते।
वर्षा हुई, भगवान का प्यार बिखरता रहा,
पीने वालों ने पिया, लेने वालों ने लिया और इकट्ठा करने वालों ने इकट्ठा किया और हम अभागे मनुष्य सीप और घोंघे इकट्ठे करते रहे।
जो गोताखोर अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर नीचे समुद्र में उतरते चले गए वो मोती इकट्ठे करके लाए और हम समुद्र के किनारे बैठे हुए कमजोर, कंजूस और कृपण मनुष्य, लोभी और स्वार्थी मनुष्य केवल इस ख्वाब में बैठे रहे कि भगवान कभी हमारे चक्कर में फंस जाएगा और हम भगवान का मलिदा बनाएंगे।
मछली पकड़ने वाले आते हैं और एक लंबी वाली रस्सी लेते हैं और उसमें आटे की गोलियां लगा देते हैं और पानी में फेंक देते हैं। इसलिए फेंक देते हैं कि कोई लंबी वाली मछली हाथ में आ जाए तब उसको पकड़ लिया जाए, फिर उसका ऐसा मलिदा बनाया जाए, उसके पेट में ऐसे मसाले भरे जाएं कि जीभ कहे कि हाँ, कोई खाने वाला, पकड़ने वाला मिला था। हम भी ऐसे ही मछली को आटे की गोलियों से, चिड़िया को बहेलिए के तरीके से पकड़ने के लिए विभिन्न तरह की गोलियां इकट्ठी कर लेते हैं।
चिड़िया फंस जाए, उसके पंख फाड़े जाएं और उसका